कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
ओम शांति। हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय राजयोगी करुणा भाई जी। मौन तपस्या भट्टी में हम आपका एक हाथ की ताली से बहुत 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 स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता जी पिछले 50 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में हैं और तब से ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। आपको साकार मम्मा बाबा की पालना का भी सौभाग्य प्राप्त है। लौकिक में आप इंजीनियर थे और दक्षिण भारत के कई सेंटरों की स्थापना के निमित्त भी आप बने। सन 1971 से आप मधुबन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं कर रहे हैं। मधुबन में विशेष रूप से पीआरओ ऑफिस, ऑडियो वीडियो डिपार्टमेंट, कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आदि कई डिपार्टमेंट्स के आप निमित्त हैं। मल्टीमीडिया की सेवा में भी आपकी विशेष अभिरुचि है तथा मीडिया प्रभाग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपने कई विदेश यात्राएं भी की और अनेक आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित भी किया। साइंस के अत्याधुनिक साधनों को ईश्वरीय सेवाओं में प्रयोग कराने के भी आप निमित्त हैं। इंटरनेट पर आप जो बाप दादा की लाइव मुरली सुनते हैं वो लाइव प्रोग्राम्स के भी आपके ही प्रयास से ये संभव है। टीवी पर, रेडियो पर भी आप हम सब प्रोग्राम देखते रहते हैं जिससे विहंग मार्ग की बाबा की ये सेवाएं हो रही है, उसके पीछे भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे विशेष बाबा के रतन के लिए मैं कुछ लाइनें कहूंगी। योग की तकनीक से जुड़ी सूचना तकनीक आध्यात्मिक ज्ञान को बनाया आपने रमणीक, बाबा के बच्चे, बाबा के बच्चे आप करुणा काइंड, घर घर पहुंचाया आपने पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, क्योंकि पीस ऑफ माइंड चैनल जो आप देखते हैं उसके पीछे भी आदरणीय भ्राता जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे ही विशेष बाबा के बच्चे से आज हम क्लास सुनेंगे जिसका विषय है व्यर्थ को समर्थ बनाने की विधि।
ओम शांति। समर्थ बाबा के बच्चे हैं सभी, तभी तो इस दुनिया से दूर अपने आप को समर्थ बनाने के लिए या समर्थ हो करके भी यहां तक पहुंचे हैं। कई लोग सोचते ही रह जाते हैं, पर आपकी सोच आपको यहां तक पहुंचाया है तो समर्थ तो है ही है। बाकी आज का विषय के अनुसार जब प्रश्न है, विषय है, तो कुछ तो होगा। बहनों ने सोच के दिया होगा कि व्यर्थ शब्द अभी भी ब्राह्मणों के डिक्शनरी में है, सतयुग में तो नहीं होगा ना। समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं होगा। जैसे बाबा कहते हैं ना, डॉक्टर, लॉयर, ये सब सतयुग में नहीं होगा, तो ऐसे व्यर्थ शब्द जो है वो देवताओं के डिक्शनरी में ही नहीं है। तो हम ब्राह्मणों के डिक्शनरी में अभी तक क्यों हैं? क्या हम बहुत भाई बहने यही कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते हैं न करते हैं, पर कोई कोई आ जाता है, अब क्या करें, सुनना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो वो जाने के बाद कई बार ऐसे करते हैं कि देखो ना क्या करें, मेरा इतना टाइम व्यर्थ गया, ऐसा होता है। हम नहीं करते हैं परंतु कोई आ जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है तो उसमें अपना व्यर्थ समय चला जाता है। परंतु जो आते हैं और जाते हैं तो समय तो अपना ही गया ना, तो अपना समय को समर्थ बनाना, समर्थ के साथ साथ हमारी जानकी दादी की बहुत अच्छा शब्द है सफल, सफलता कहते हैं दादी से, सफल करो सफल करो कहते हैं। तो हम बच्चों को भी ये ध्यान रहे कि सुबह आंख खोलते ही और रात को नींद आने तक जो समय है हमारे पास, और तो कुछ नहीं, वो समय को हम कैसे सफल करें, तो फिर हम सोच सकते हैं कि ये समर्थ रहा या अच्छा रहा या साधारण रहा, तो वो फिर हम सोच सकते हैं। पर पहले हमको ये सोचना है कि आज हम ब्राह्मणों के साथ या हाथ में केवल समय ही है, जितना भी वैल्यू है, चाहे शहर बाजार से आपको गिने या बैंक बैलेंस से गिने या आपकी हेल्थ के हिसाब से गिने, कुछ भी उसको हम सोचते हैं तो उसका वैल्यू वो समय के अनुसार है। हर एक के पास, वैसे हमारे ज्ञानमान बाबा के बच्चे बहुत होशियार होते हैं तो वो सेकंड का कैलकुलेट करते हैं, एक दिन में कितना मिनट कितना घंटा कितना सेकंड होता है वो लिख के देते हैं। आप सुबह उठते ही भगवान आपको इतना वरदान देते हैं, कैश जैसे देते हैं, शाम तक आपको खर्चा करना है। कैसे खर्चा करते हैं वो आपके ऊपर है। तो चुपचाप बैठे रहो, वो चुपचाप भी चला जाएगा। तो हर रोज बाबा हम बच्चों को देते हैं, तो इसीलिए जैसे ही उठते हैं तो कई लोग हाथ जोड़ते हैं, भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हम बच्चे भी बाबा को थैंक्स देते हैं, शुक्रिया बाबा एक और दिन दिया आपने, क्योंकि जो सोए जरूरी नहीं है दूसरी दिन उठते हैं, अखबारों में खबर आती है ना, तो हमको तो एक दिन बाबा ने दे दिया, बाबा को थैंक्स दे देते हैं। तो हमारा भी आंख खुलते ही बाबा के साथ से शुरू होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय ही सब कुछ है। जो भी कार्य, चाहे टेररिस्ट का ही हो तो वो भी समय ही लेता है, बाकी कुछ नहीं। तो हम बच्चों को समय के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो फिर उसको सफल भी कर सकते हैं, समर्थ भी कर सकते हैं। तो ध्यान कैसे दें, तो उसका बाबा ने तीन शब्दों में बताया है। एक है साधारण, भाई आज का दिन ठीक है चल गया, कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बहुत ये नहीं हुआ, ऐसा मतलब हो गया, आज सुबह हुआ, रात भी हो गया, पता ही नहीं पड़ा, हो गया। तो इसको हम कहते हैं साधारण रूप से। परंतु कुछ बाबा के बच्चे थोड़ा सा हुशार है, ऐसे कैसे देंगे, एक दिन ही गया संगम के, इतना वैल्यूएबल, ऐसे ही सुबह उठे और शाम हो गया, ऐसा नहीं। हम चार्ट लिखते हैं कि हमने क्या किया, सुबह क्या किया, दिन में क्या किया, शाम को क्या किया। तो वो चार्ट लिखने का किसी किसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस है, बाबा कभी कभी मुरली में बहुत फोर्स देते हैं। तो जब चार्ट लिखने जाते हैं ना, तो थोड़ा समय का वैल्यू होता है, मामा इतने बजे से इतने बजे तक मैंने क्या किया। तो उससे उस समय का वैल्यू थोड़ा, नहीं नहीं हम अभी ये नहीं करेंगे, हमको ये करना है, ऐसा। तो उस समय की वैल्यू आ जाती है तुरंत। तो ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है जो चार्ट लिखने का। पर बाबा ने एक और शब्द यूज किया था, एक तो साधारण, ये तो साधारण लोग हैं, साधारण है भाई, दूसरे कहते हैं वीआईपी, वीआईपी कहते हैं आजकल। ये क्या होता है भाई, ये वीआईपी कैसा हो गया, ये तो साधारण लोग ही होते हैं, पर एक दिन अचानक हम कहते हैं ये वीआईपी है। तो ये वीआईपी शब्द तब आता है कि उससे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, उसके पास टाइम नहीं है। पहले तो हम मिल जाते थे, कभी भी चाहे उनसे मिल लेते थे, आजकल ये वीआईपी बन गया है, तो उनका टाइम लेने के लिए हमको पहले से फिक्स करना पड़ता है, तो उसके पास टाइम का वैल्यू है। तो वीआईपी बनना एक और है, वही समय, बाकी तो एक बहुत बड़ा है जो वीवीवीवीआईपी कहते हैं, तो उससे तो मिल भी नहीं सकते हम लोग, वो टाइम देते भी नहीं है। मतलब उनकी टाइम इतनी वैल्यू है, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर हम देखते हैं, आज तो अफ्रीका में है, कल कहाँ है, कल कहाँ है। तो जिसको हम वीवीआई, उनसे मिलना है तो फिर आपको एक मास वेट करना पड़े, दो मास वेट करना पड़े, है समय की बात है। भगवान ने सबको उतना ही दिया है न्याय हिसाब से। तो हम सभी चाहते तो है अंदर से, हम क्यों नहीं वीआईपी बने, हरेक चाहता है, बन सके तो अच्छी बात है, वीआईपी क्यों नहीं बने। वीवीआईपी तो ठीक है, बड़ी बात है, पर वीआईपी तो बन सकते हैं। आप कभी किसी वीआईपी के पास थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्या करता है, ये समय इनका सब कहां जाता है। तो बहुत सिंपल है कि वो थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं सुबह से शाम तक का। हम लोग क्या करते हैं, आज मैंने सुबह से शाम तक क्या किया उसका चार्ट लिखते हैं, परंतु वीआईपी का थोड़ा सा और विधान है, वो सुबह ही लिख देता है, मुझे आज इस समय पर ये करना है, इस समय पर ये करना है, इस समय पर ये करना है। हालांकि बाबा ने हम ब्राह्मणों को कुछ तो वीआईपी बना ही दिया है, भाई सुबह 3:30 बजे उठना है, ये वीआईपी है भाई, सुबह नहीं उठता है तो वीआईपी नहीं है, हो उनका टाइम फिक्स नहीं है, ये क्या बात है। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं तो जो पढ़े लिखे होते हैं ना, होशियार है, तो दुनिया गोल है कि अमेरिका में ये टाइम है, ऑस्ट्रेलिया में ये टाइम है, तो जिस दिन वो लेट से उठता है ना, कहता है आज वो आपने किया, कहता है हाँ मैंने अमृत वेला किया, परंतु ऑस्ट्रेलिया में था आज। परंतु वीआईपी जो है वो इंडिया में ही रहेगा, और वो कहेगा सुबह मुझे इस टाइम से इस टाइम तक वहां जाना है, ये मिलने आने वाले हैं, ये काम करना है। तो वो हर जो भी कार्य करना है, भले इतना मिनट टू मिनट तो नहीं भी हो, पर इसको इतना मालूम है कि भाई आज मुझे इसका उद्घाटन करने जाना है इतना बजे, जैसे हमारी दादियों का फिक्स रहता है, कोई भी दादियों का ऐसा ही नहीं होता है, उनका पहले से ही फिक्स होता है। तो हम लोग वीआईपी आज से बनना है, फाइनल है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आज सारा दिन में मैं ये करूंगा, ये टाइम थोड़ा सा अपना फिक्स कर सके। जैसे 3:30 बजे अपना अमृत वेला है ही, और क्लास का बाबा ने एक बार ये भी कहा था कि क्लास में कौन आते हैं वो वीआईपी है, इसका ग्रेड ही वो है। क्लास में जो आता है वो वीआईपी है। अपना टाइम पहले फिक्स करके वो समय देता है उसके लिए खास और आते हैं, तो ये एक वीआईपी का विशेष क्वालिफिकेशन है। बाकी तो बाबा ने दिनचर्या तो हर एक का अपना होता है, तो एक ट्रैफिक टाइम, भाई 10:30 बजे आपका क्लास है तो भाई 10:30 बजे योग में भी बैठना है क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल है। तो भले हम लोग कहीं भी है, आजकल हम लोग हर एक के पास आजकल मोबाइल तो होता ही है, तो उसमें हम लोगों ने खास वो एक ऐप कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं उसको, आजकल बहुत सहज है, आप इसको डाल दो तो वो अपने आप बजाएगा अपना टाइम पर, भले धीरे से बजे कुछ भी हो। तो आपको तो मालूम है कि सारे बाबा के लाखों बच्चे उस समय पर भगवान के पास पहुंचते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि बाबा भी उस समय पर दृष्टि देने के लिए बैठना पड़ता है। बाबा को भी भक्तों को भी कहना पड़ता है भाई ठहरो, अभी हमें हमारे बच्चे आ रहे हैं। हम लोग पहले कहते थे कि भाई सुबह अमृत वेले में बाबा आके कटिया हिलाते थे, ऐसा बहुतों को अनुभव है। तो जब से दादी जी ने ये जो ट्रैफिक कंट्रोल का किया, ये ट्रैफिक कंट्रोल में भी बाबा हमारे इंतजार कर रहा है, क्योंकि खास बच्चे बाबा के पास आ रहे हैं। तो भगवान को भी बांध लिए हैं हम लोग, बच्चों ने, भक्तों ने कहां तक बांधा है मालूम नहीं, बट बच्चों ने तो बाबा को बांध दिया भाई 10:30 बजे कहीं नहीं जाना, मैं आ रहा हूं। तो अपने दिनचर्या की डायरी में ये ट्रैफिक कंट्रोल भी एक बहुत सहयोगी है हम लोगों को, अपने चार्ट में ये आ जाता है। बाकी तो दादी अव्यक्त होने से पहले हर घंटे में भी बाबा को याद करने की एक हम बच्चों को संस्कार बना दिया था। बहुत बच्चे अभी भी यहां भी बजता है मैं देख रहा हूं, तो हर घंटे में भी एक तीन मिनट नहीं है वो, एक मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल बजता है। तो ये है जो समय पहले से ही निश्चित करना, ये समय पर मैं ये करूंगा, और ये है वीआईपी का लक्षण। मुझे याद है कि लच्छू दादी जो ब्रह्मा बाबा को ब्राह्मणी थी, तो बाबा उसको एक पहले से बोल के रखते थे, बच्ची जब मैं खाना खाता हूं ना तो मुझे याद दिलाना, मेरे से पूछना बाबा शिव बाबा याद है। देखो ब्रह्मा बाबा जो उनके ब्राह्मणी है छोटी लच्छू दीदी, उनको बाबा कहते हैं कि बाबा को पूछो, बाबा को याद दिलाओ कि बाबा खाना खा रहे हैं, शिव बाबा याद है। माना भोजन भी बाबा की याद से खा सको तो वीआईपी हो। पहले से ही हमने ये डिसाइड किया है, निश्चय किया है कि मैं भोजन करते करते भी मैं बाबा की याद करूंगा। नहीं करते हैं, बातें करते रहते हैं तो समझ जाना कि भाई वीआईपी नहीं है, साधारण है। रात को सोने के पहले भी थोड़ा सा हिसाब किताब बाबा को देने का एक नियम बना लेते हैं तो अच्छा है। ये वीआईपीस करते हैं कि भाई आज मैंने क्या क्या किया, क्या हुआ, अभी कल के लिए कोई पोस्टपोन तो नहीं है, क्या है। तो रात को सोने से पहले ही थोड़ा सा एक विचार करके जो भी है उसको बाबा को समर्पित करके बाबा की याद में जो सोता है तो वो सुबह न भी उठता है किसी कारण से चिंता नहीं है, क्योंकि बाबा के पास गए हैं, बाबा के गोद में गए हैं, सब कुछ हिसाब किताब बाबा को दे दिया है, निश्चिंत होके जैसे। तो वो भी एक बहुत अच्छा हमारा नियम है कि कोई कोई पता नहीं कितना बजे सोते हैं, कितना बजे हैं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। पर हम लोगों को आश्रम में बाबा सदाई ये नियम पक्का कराए, 10 बजे के बाद कोई लाइट नहीं जलाना। तो बिल्कुल अपने आप को हम लोग समय के अनुसार, नींद नहीं आता है कोई बात नहीं, बाबा तो है, ये समय बाबा को दिया हुआ है हमने, 10 बजे के बाद और किसी को नहीं। पता नहीं लोग 10 बजे के बाद भी लगे रहते हैं, 11 बज जाता है, चाहे टीवी के सामने, यहां वहां कुछ भी होता है, टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं, बैठे ही बैठे हैं। परंतु बाबा कहते हैं 10 बजे के बाद का समय जो है वो हमने बाबा को दिया हुआ है। नींद आता है तो अच्छी बात है, बाबा के गोद में है, नींद नहीं भी आते हैं तो भी बाबा के साथ है। 10 बजे के बाद हमारा समय और किसी को नहीं, हम तो मोस्ट बिजी है भाई, 10 बजे के बाद में हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स है। तो अपना समय जो बाबा ने दिया है उसको हम कितना इम्पोर्टेंस देते हैं वो हमारे ऊपर है। नहीं तो दो ही शब्द है, वीआईपी नहीं तो साधारण है। समझो आपने नहीं प्लान किया, आपका ही समय है, पूरा दिन गया, तो आप समझना कि साधारण रही मैं आज वीआईपी में नहीं। बाबा तो वीवीआईपी बनाना चाहता है आपको, आपका दर्शन के लिए भगत आवे तड़फे कि मैं दर्शन करूं, बाबा तो ऐसा बनाना चाहता है हमको। पर कम से कम अपने आप को तो हमको इतना तो बनाना चाहिए कि भाई हमारा टाइम का वैल्यू है, जितना वैल्यू हम अपने आप कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा हम ब्राह्मण जीवन में देखें कि बेस्ट क्या है जो हम समय को सफल कर सके, जो भाई ये करो तो ये सबसे श्रेष्ठ है ब्राह्मणों के लिए। वो कोई भी टाइम हो, जो भी टाइम हमारी सारा दिन रात जो भी है, तो ऐसा क्या करे जो बेस्ट कहा जाए। जो आप यहां करने आए हैं वो है सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है। ताली तो बजाओ। योग ही सर्वश्रेष्ठ है, योग से श्रेष्ठ और कोई कार्य नहीं है जो आपका श्रेष्ठ कहा जाए, सफल कहा जाए। मुश्किल तो नहीं ना, बाबा ने पहले से ही लिखा है। कौन सा योग है भाई? सहज राजयोग। आप ये भी नहीं कह सकते कि बाबा ये तो योग करना तो मुश्किल है, योग तो बाबा ने कहा ही सहज है तो अभी क्या करें। और बाबा को कैसे कहे कि भाई बाबा ये तो मुश्किल योग है। तो बाबा ने योग के लिए कहा ही है सहज राजयोग। सहज भी है, श्रेष्ठ राजयोग है, सभी योगों से श्रेष्ठ है। हमारे लिए गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा इस बार ये तो नहीं कहेंगे कि भाई थोड़ा फाइट करना पड़ा, पर उनको समझाना पड़ा कि आप लोग योग 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 कहते हो पर ये राजयोग नहीं है। राजयोग जो है, देखो ये बाबा जो सिखा रहे हैं हमको, इसको समझाने में बहुत टाइम लगा, बहुत ही उसको एग्जाम्पल्स देना पड़ा। हमारे ब्रिजमोहन भाई, आशा दीदी, हमारी शिवानी बहन, सब लगे थे गवर्नमेंट को समझाने में, कि वो समझते थे ब्रह्मा कुमार ये योग योग थोड़ी करते हैं, ये तो बैठे रहते हैं ऐसा वो समझते सिर नीचे पांव ऊपर किया तो योग चल रहा है तो उसी को सारा योग कहते हैं। पर हमको तो बाबा ने कहा है राज योग है और सहज योग भी है। सहज क्यों है? क्योंकि वो योग तो सब नहीं कर सकते, पर ये योग तो सारे सभी, देखो बच्चे भी है तो बुजुर्ग भी है, सब लोग हैं, तो ये योग तो सब कर सकते हैं पर वो नहीं। तो इसीलिए उस योग में और इस योग में कितना अंतर है, यहां तक भी उसको कह दिया, अच्छा बाबा तेरी बड़ी अच्छी संतंदुरुस्ती है, सब कुछ है, तो मन ठिकाना नहीं है, अशांति कितनी है, तो मन को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप, तो क्या पराया जीवन में। स्वास्थ्य ठीक है, चाहिए स्वास्थ्य, चाहिए ही चाहिए, तो स्वास्थ्य के पीछे संयम भी चाहिए, और जो सारा दिन की जो दिनचर्या है वो भी तो सही चाहिए। और सबसे ज्यादा हम ब्राह्मणों के लिए बाबा ने डॉक्टरों से भी थोड़ा सा मुक्त रखा, या कम समझो, वो खाने पीने का। तो योगी योग जो करता है वो, उसको खाने पीने का तो कंट्रोल है ही नहीं, तो खाने पीने का बारे में जो वेजिटेरियन जिसको हम कहते हैं, सात्विक फूड हम जो कहते हैं, ये सब चीजें हमारे योग के साथ आता है, उनके इससे नहीं संबंध है कोई। उनको जब डॉक्टर बोलेंगे तो वो करेगा, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए जो योग बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है तो ये सर्वश्रेष्ठ है, और समय को हम सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल टाइम हमारा वो है जब हम मेरे बाबा के साथ हैं। आज के मुरली में आज की संदेश जो बाबा ने हम सबको भेजा दादी जी के द्वारा, तो उसमें भी बाबा ने ये कहा, बिन बिन स्वरूप से, बिन बिन रूप से भी बाबा के साथ आप बिता सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा योग है। जो आपको अच्छा लगे, जिस तरह से आपको अच्छा लगे, बाबा के साथ अपना समय बिताते हैं तो वो है सर्वश्रेष्ठ योग कहा जाता है। नहीं तो हम समझते हैं भी आज हमने कुछ नहीं किया, कोई सेवा नहीं किया, ऐसे तड़पते हैं लोग, आज कोई काम नहीं है मुझे कोई सर। अरे बाबा थैंक्स देओ बाबा को, आज कुछ ऐसा है नहीं है तो शांति से मैं अपने बाबा के साथ तो बैठ सकता हूं। तो ब्राह्मणों को ये बात थोड़ा सा पक्का आ जाना चाहिए, मुझे आज काम नहीं है, ऐसा कभी भी हम लोगों के मुख से नहीं निकलेगा। थोड़ा भी कुछ समय मिलता है, क्योंकि सेवा तो करना ही है, बाबा की आज्ञा है, और उसमें खुशी भी मिलती है, भाग्य भी होता है, अन्य आत्माओं का कल्याण होता है, तो करना ही चाहिए। परंतु किसी भी कारण से नहीं हुआ तो इतनी खुशी मनानी चाहिए, वाह बाबा वाह, आज बाबा ने मुझे ऐसा फ्री कर दिया है, तो थैंक यू बाबा कहना चाहिए। तो इसलिए पहला पहला जो है वो योग है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो हमारे सारे दिन के समय में जितना समय आप दे सकते हैं। मैं इसीलिए कहा कि ये आप जो अभी कर रहे हैं, क्योंकि अधिक से अधिक समय आप शिव बाबा के साथ बिता रहे हैं और कोई संग नहीं, चिंता नहीं, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि आप महान भाग्यशाली हो, मैं भी कहूंगा वीआईपी तो आप लोग सभी बन चुके हैं, आप जानते हैं कि श्रेष्ठ क्या चीज है वो। अब बाकी समय क्या करें, सारा समय बैठे तो नहीं रह सकते हैं, अपने अपने कारोबार में है, हर एक अपने कारोबार में व्यस्त है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, शरीर को चलाने के लिए भी करना है। पर उसमें भी एक छोटा सा विधि, जिसको विधि विधान बाबा कहते हैं, थोड़ा ध्यान ये रखना कि हम समझो आत्माओं के साथ ही हमारा संपर्क है। कोई शिक्षक है तो टीचर है, समझो बच्चों को पढ़ाते हैं तो आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नहीं। पढ़ाई एक और चीज है, परंतु टीचर ने कैसे पढ़ाया जो दिल तक गया वो, तो वो एक विधि और होता है, एक प्यार से सरल रीति से किसी को भलाई के लिए। माना जो भी आप कार्य करो उस कार्य के पहले एक संकल्प हमको दृढ़ करना होता है। जैसे शिव बाबा सदा कल्याणकारी, शिव बाबा के लिए सदा कल्याणकारी, सरू का कल्याण करने वाला उसका टाइटल ये है, तो इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता है इस समय पर ये शनि का टाइम है, ये टाइम ये है वो है, नहीं, मेरा बाबा के लिए सदा ही वो कल्याणकारी समय, क्योंकि मेरा बाबा कल्याणकारी है, आप कब याद करो कल्याण ही करेगा। तो इसी तरह से हम बच्चों को भी निमित्त बनना है कि बाबा ने हमको चुना है, बाबा ने हमको अपना बच्चा बनाया है, तो हमारा जो पहला संकल्प सर्व का भला, जो भी हो उनका भला करना है मुझे, उनको अच्छा करना है, क्योंकि आत्माओं की दुनिया है ये, आत्माओं के साथ हम है। वो कौन है ये सोचने वाला कभी देवी या देवता नहीं बन सकता है। मंदिर में जो देवता या देवी है वो कभी ये नहीं सोचता है कि भाई ये कौन है, चोर है या अच्छा है या भगत है, मेरा महिमा करने वाला है, वो नहीं है। उसका एक ही है, हर्षित मुक्ता, और हाथ ऊपर है, आशीर्वाद ही आशीर्वाद। माना जो भी आएंगे मुझे उनका भला ही करना है, कल्याण ही करना है। वो कौन है हम नहीं पूछते, वो जाने, हमको नहीं जाने। तो इसीलिए हमारा सर्व कर्म के पीछे एक मंत्र रहता है, कल्याणकारी, सर्व जने सुखिनो भवन्तु। साकार बाबा के साथ निर्मला दीदी, निर्मल शांता दीदी बच्ची, कभी उनसे हम पूछते थे कि आप बाबा जब ऐसे तीर्थ देते थे गंगा में कई बार, तो कहते हैं बाबा कहते थे सर्व जने सुखिनो भवन्तु ऐसा, तो हम बच्चे कहते हैं बाबा हमारे लिए भी बोलो ना, मेरे बच्चों का भला हो ऐसा। नहीं, बाबा कभी नहीं कहते थे, अज्ञान काल की बात कह रहे थे कि सर्व जने सुखिनो भवन्तु। देखो शिव बाबा क्यों उनका तन लिया, आपको हजार बात बता सकते हैं कि बाबा को ऐसे ही बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा का तन को नहीं लिया। तो हम बच्चों को भी पहला पहला ये संस्कार होना चाहिए, इस दुनिया में बाबा हमको आज के दिन भेज रहा है सेवा के लिए। क्या सेवा करना है, जो भी व्यवहार कर रहे हैं उसकी चिंता नहीं, पर पहला पहला बाबा का आज्ञा है हम बच्चों के लिए, सर्व जने सुखिनो भवन्तु, सब सुखी हो, जो भी है सुखी हो, सुखी हो, क्योंकि हम ही देवता थे और हम ही देवता बन रहे हैं, और हमको आशीर्वाद ही देना है। भले हमारी प्रकाशमणि दादी मुझे सुनाती थी कभी, सुबह से शाम तक दादी आप क्या कर रहे हो, इतनी व्यस्त रहती हो, इतनी बिजी रहती हो, आप क्या करती हो, अंदर आपकी क्या भावना है, क्या है। तो हम सोचते हैं ना कि भाई दादी का आशीर्वाद मिले, दादी अपने हाथ में ये करे, दादी का बस एक नजर मिले, ये हम सोचते हैं ना। पर दादी क्या कहती है पता है, दादी कहती है मैं सोचती हूं मुझे आज कितनी दुआएं मिली। दादी कह रही है मैं सुबह से शाम तक ये देख रही हूं कि मुझे आज कितनी दुआएं मिली है? हम दादी को दुआएं देने वाले, तो दादी का दुआएं दो दुआएं लो। तो पहले मैं सदा ही कोशिश करती हूं कि मेरे सामने जो आत्मा आए वो खुश होके जाए। कैसे कर रही है दादी दुआएं लेने के लिए क्या कर रही है, तो पहले ये कोशिश करती है कि कैसा भी आत्मा कोई भी आत्मा हो वो खुश होके जाए यहां से। तो वो खुश होगा तो वो दिल से खुशी से मेरा दादी वाह दादी, दादी ने मुझे ये कहा, दादी ने मुझे ये बोला, दादी ने मुझे दृष्टि, उसकी जो दिल से जो निकलता है दुआ वो है दुआ है। तो हमको भी थोड़ा सा ये आज से सोचना है, हम तो अच्छा कर रहे हैं परंतु उस अच्छे कार्य का रिजल्ट जो है वो दुआएं देना है हमको मिले। सुख दो तो सुख लो बोलते हैं ना, पहले सुख देना पड़े किसी को फिर हमको सुख मिलता है, वो नहीं देते पर मिलता है। पर दुआएं दिल से निकलता है, तो इसीलिए हमको जो भी कार्य करना है ये अपने मन में पक्का करना है कि मुझे दुआएं देना है, आशीर्वाद देना है, भला करना है, तो फिर मुझे भी मिलेगा। नहीं तो उस दिन का कमाई नहीं, कितना सेल हुआ और कितना कैश आया वो नहीं, हमारा ये है। आत्माओं के साथ व्यवहार जब करते हैं तो हमारे से कितना खुश होते हैं। हम लोग कभी सोचते ही नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो अपने रास्ते में चले, अब दूसरे हमारे लिए क्या सोच रहे हैं वो हम लोगों को कभी चिंता ही नहीं रहता है। हम अच्छे हैं, हम ठीक चल रहे हैं, परंतु उसका रिजल्ट क्या। तो इसीलिए दादी जी के पास एक विशेष ऐसा एक गुण था जो दुआएं लेने में वो बहुत सहज होता था। आप कोई बता सकते हैं? प्रकाशमणि दादी का मैं कह रहा हूं, क्यों मम्मा बाबा वो तो बाबा तो भगवान के पास ही बैठे हैं, मम्मा तो बाबा के साथ ही है, पर प्रकाशमणि दादी तो हम सब के साथ थी, हम सब मिलकर के पुरुषार्थ किया है। तो हम सिर्फ दादी जी के ये दो गुण चोरी करें ना तो दुआएं ही दुआएं मिलेंगे हमको। पहला गुण था दादी का हर्षित मुक्ता, दादी हस्ती ऐसा हस्ती है जो दादी का वो हर्षित मुक्त फोटो भी देखते हैं ना एकदम जैसे खुश हो जाते हैं। मैं तो अपने टेबल पे खास दादी जी का फोटो केवल उस काम के लिए रखता हूं, याद तो मैं शिव बाबा को करूंगा, सैंपल एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा मम्मा को भी फॉलो करूंगा, पर दादी को दादी की जो हर्षित मुक्ता है वो देखते ही कैसा भी कुछ भी मूड होगा ना भूल जाते हैं। दादी हंस रही है और हम रो रहे हैं, हम सोच में बैठे हैं, नहीं हंसना है सदा ही ऑलवेज। दादी को सीरियस हम लोगों ने कभी नहीं देखा, हर्षित। दूसरा एक गुण है जो सारे विश्व को दादी ने जीता, कितने भी बड़े होंगे विश्व के वो, पर दादी के सामने आके झुक जाते थे। ऐसा दादी झुकती थी, एकदम जिसको भी देखेंगे तो ऐसा झुकती है दादी जो सामने वाला ना चाहते हुए भी और झुक जाता। हमने आंखों से देखा था कि भाई कितने बड़े बड़े मिनिस्टर या जिसका नाम लीजिए वो सब आए हैं, दादी से मिलने आए हैं। तो दादी वो आते ही इतनी झुकती थी, इतनी झुकती थी, तो सामने वाला एकदम झुक जाता। मेरा अनुभव ब्रह्मा बाबा के साथ एक बार ऐसा हुआ, एक हमारे कर्नाटक के एक मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर बने, पर सभी लोगों को मालूम है कि भाई ये आदमी कभी किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। बहुत ही ऐसे आत्मा थे, वीआईपी थे, चीफ मिनिस्टर भी रहे वहां कर्नाटक में। बाबा से मिलने के लिए वो सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर रहे यहां दिल्ली में, तो यहां से जाते हुए एक बार मैंने हाथ जोड़ा उनको कि यहां उतर के हमारे बाबा जी से मिल के जा, तो मैं लेके आया। वहां मैसूर में दशहरा के टाइम पे वहां का राजा के सामने भी ये जाएगा, ये कभी नहीं झुकता था, नहीं तो वो नियम है वहां का, विधि है, राजा के सामने तो झुकना ही चाहिए, पर ये नहीं झुकता था। तो ऐसा आदमी को मैं ले तो आ रहा हूं बाबा से मिलाने, तो अभी बाबा के सामने ये क्या करेगा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करूं। तो बाबा आए तो ये तो कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे ही बिठाए थे हमने उनको पहले से ही। तो बाबा आते ही तो खड़े तो हुए, तो बाबा ने अचानक इसको कह दिया कि बच्चे, बाबा संदली के तरफ, बाबा के गद्दी के तरफ उसको इशारा दे रहे हैं, बच्चे आप आओ आओ यहां बैठो यहां बैठो। तो वो कंफ्यूज हो गया, तो अभी बाबा अपनी संदली और गद्दी के तरफ इशारा दे रहे हैं कि भाई यहां बैठो, बाबा देखो अपनी गद्दी पे उनको ऑफर कर रहे हैं कि भाई बैठो। तो अभी संदली एक है तो कैसे बैठेंगे, बाबा कैसे बैठेंगे और वो कैसे बैठेंगे, और बाबा ऑफर कर रहा है। तो बाबा ने कहा, तो देखा तो भाई बच्चा नहीं बैठ रहा है, तो बाबा ने कहा अच्छा अच्छा तो हम दोनों नीचे बैठ जाते हैं। और बाबा एकदम नीचे बैठे, हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा उसको नीचे बैठता हुआ, वो भी चुपचाप नीचे बैठ गया। माना हम झुकते हैं तो दुनिया झुक जाती है, और हम सब चाहते हैं दूसरे झुके, परंतु हम कितना झुकते हैं उसके आधार पर है। तो दादी जी के पास ये एक गुण होने से सारे विश्व को दादी ने जीता। नहीं तो हम समझते थे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद दादी जी कैसे संभालेगी ये सारा यज्ञ, दादी के सामने सभी दादियां थे, और हमारे जगदीश भाई जैसे महान विद्वान भी थे, परंतु दादी का यही एक गुण ने सबका दिल जीत लिया। और हमारी मीडिया भी उस समय पर छोटा सा काम किया, जो दादी विश्व का मां वर्ल्ड मदर के नाम से दादी मशहूर हुई, जहां भी विश्व में जाती थी दादी को कहते थे वर्ल्ड मदर। सिर्फ यही एक नम्रता की गुण से, तो इसीलिए तो हम बच्चों को भी दुआएं लेना है तो एक हर्षित मुक्ता, बाबा भी कहते हैं चेहरा और चलन, तो ये हम दादी जी को फॉलो करते हैं। तो भले कोई भी टाइम हो सारे दिन में किसी के साथ भी हम व्यवहार करते हैं तो हमारा समय वो सफल हो जाता है और सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि हमारा केवल दो ही विचार है और कुछ भी नहीं, सर्व का भला हो और हम इनको क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो समय कुछ ऐसा आ गया है जो इस समय पर जो मोस्ट पावरफुल जो शक्ति है, जो हम सबका समय को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, तो योग तो है ही है, वो तो आपको पहले भी बताया, परंतु इसके अलावा भी थोड़ा सा हम जितना इस समय पर आवाज में आते हैं, जो सारा दिन बातचीत करते हैं, बोलना पड़ता है और कईयों का तो बोल के ही चलाना पड़ता है, बोल के ही करना पड़ता है, सारा टाइम बोलना पड़ता है, थोड़ा सा अभी हम लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा है, जितना हम बोल के हमारे कारोबार जो चला रहे हैं उससे अच्छा और ज्यादा रिजल्ट और हमको सबसे ज्यादा फायदा थोड़ा सा साइलेंस पावर को बढ़ाने में, क्योंकि बुद्धिमानों का बुद्धि बाबा ने दे दिया है सब बच्चों को, सब ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे बैठे हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसके पास उत्तर नहीं हो, फटाक से उत्तर दे देते हैं हम लोग, ज्ञानी तो आत्माएं हैं, बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दे दिया है, 18 अध्याय पूरा दे दिया है, सबको पता है क्या नहीं करना क्या करना है, इसलिए इस दुनिया के लोगों की कोई भी प्रश्न है उसको फट से उत्तर, उसको वो पूछने से पहले ही हम बोलना शुरू कर देते हैं, यहां तक हो जाता है भाई ये आ रहे हैं सामने से तो अभी थोड़ा साइड करें, नहीं तो ये बोलना शुरू कर देंगे तो बंद ही नहीं करेंगे, हम फेमस हैं। परंतु हम बच्चों को इस समय पर अभी पार्ट चेंज करना पड़ेगा, जो बाबा मम्मा दादियां इन सबको हमने देखा है, लास्ट लास्ट में इन्होंने, बाबा ने भी 2 साल, हमारे दादी ने भी 2 साल साइलेंस पावर को इन्होंने प्रैक्टिस कराए थे। अचानक मैं बाबा को आकर के साकार बाबा को सारा समाचार सुनाता था, तो जैसे ही मैं समाचार सुनाता रहा तो बाबा कहते क्या बोला बच्चे, तो मैंने कहा अच्छा तो बाबा यहां नहीं थे क्या, मैं तो सुनाते ही जा रहा हूं। तो वो दिन उसके बाद फिर मैंने बाबा को वो जो हिस्ट्री सुनाता था वो नहीं, थोड़ा सा सार में सुना लेता था, क्योंकि मालूम पड़ गया था कि अब बाबा थोड़ा सा उपराम अवस्था में है, ब्रह्मा बाबा के मैं। ऐसे ही मम्मा को भी हमने देखा था, मम्मा के लिए तो टाइटली था, गंभीर है मम्मा, अंतर्मुखी है मम्मा, मम्मा के नंबर 1 गुण था ये, मम्मा कौन है, मम्मा अंतर्मुखी है, मम्मा गंभीर है, मम्मा के सामने कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं रख सकते, कोई भी हो, दादियां हो ये कोई भी हो, मम्मा के सामने बोलने के, मम्मा से दृष्टि लेते रहते थे, जब मम्मा को भी पूछे तो 2 शब्द बोले, अपने आप ही सब कुछ बोल दे ऐसा नहीं है, मम्मा एकदम गंभीर रहती थी। तो सबका हमने ये देखा था, तो आज आपने भी एक संकल्प रख के यहां आए हैं, हम बट्टी करके जाएंगे, बट्टी करके जाएंगे, तो बट्टी की जो सफलता है वो साइलेंस है। तो जो आपको वहां जाके देखे तो कहे वाह ये इन्होंने तो सचमुच बट्टी करके आए, क्यों, तो पहले सीधा बोल देते थे, अभी चुप है, पूछे तो बोलेंगे नहीं तो नहीं बोलेंगे, जो पहले बोल बोल के समझाते थे किसी को नहीं, थोड़ा सा साइलेंस पावर से जो बोलना है बोलना, तो सामने वाला अपने आप सोचे कि भाई मुझे क्या करना है, तो जो कहना है वो संकल्प शक्ति से साइलेंस पावर से दूसरों को आप अभी एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कैसे बाबा सफल करा रहा है। पावर ऑफ साइलेंस की बहुत बहुत शक्ति है। तो वैसे लोग चुप रहते हैं तो माना कुछ ना कुछ तो सोच रहे होंगे, उनकी फेस में मालूम पड़ता है कि इसको बेचारे को बहुत टेंशन है, ये तो पता नहीं किस इसमें लगा हुआ है। पर हम बच्चे ऐसा नहीं है, हम चुप है माना हमारी कुछ और है चल रहा है, हमारे से दूसरों को जो संदेश जाता है वो दूसरा जाता है। हम हर्षित है पर चुप है, दूसरे चुप है पर हर्षित नहीं है, टेंशन में। जितनी फेसेस आप देखो, तो इसलिए ये साधना हमको अभी थोड़ा सा और बढ़ाना है जितना समय मिले। उसके लिए कोई ये टाइम वो टाइम की नहीं है। आप नहीं बोलते हैं तो समझो आपने कुछ सेव भी किया और उससे फायदा भी हुआ और दूसरों तक भी उसका प्रभाव हो गया। अरे ये तो साइलेंस है, अनेक फायदा है साइलेंस में। तो इसीलिए व्यर्थ को समर्थ करना है तो उसका एक ही साधन है, जो जितना हम वाचा को सीमित करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, बहुत जरूरी हो तो, क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी जाता है। देखो बाबा की भी इतनी हाईएस्ट मुरलियां जो भी हमने सुनी है वो अव्यक्त वाच से सुनी है। भगवान ने जो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान हम सबको जो दिया अव्यक्त से, तो इसलिए साइलेंस इज द हाईएस्ट पावर। साइंस को जीतना है तो भी बाबा कहते हैं साइलेंस पावर है, और जो आप अभी तक नहीं कर पाते थे उसको भी करना है तो ये साइलेंस पावर ही आपको हेल्प करेगा और वही शक्ति आपको सचमुच पावरफुल बनाएगा। दूसरी कोई रास्ता मुझे नहीं आता है। मैं जो भी सुनाता हूं सदा मैं कोशिश ये करता हूं पहले मैं इसका अनुभव करूं फिर मैं आपको बताऊं, और पिछले एक साल से तो इस एक ही बात पर मैं ध्यान देता जा रहा हूं और मुझे बहुत खुशी होती है। जितना समय मैं अकेला रहता हूं, जितना समय अपने आप में मैं रहता हूं, अनेक नई नई बाबा प्रेरणा भी देते हैं, अनेक नए नए कार्य भी होता जाता है और खुशी भी रहती है और अपने आप को एक शक्ति स्वरूप का एक महसूसता भी होता है। मैं भी यही आशा करूंगा आप सभी भाई बहने इस भट्टी से अपने साइलेंस पावर को जितना आप बढ़ाते जाएंगे तो आप भी समर्थ और शक्ति स्वरूप बाबा के बच्चे बनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा भाई जी ने, बहुत सुंदर साकार बाबा के भी। और साथ साथ बाबा ने अपनी सारी विल पावर दादी प्रकाशमणि जी को दी, अनुभव तो आप सबने सुना। जब बाबा व्यक्त हुए थे तो दादी प्रकाशमणि जी के हाथ में ही हाथ देखकर तो उन दादी जी की भी विशेषताएं सुनी, और उसी प्रकार से हमको भी ऐसे ही है। दादी जी का स्लोगन है निमित निर्माण चित बनकर के सेवा करनी है, ऐसी सुंदर बातें। और अपनी दिनचर्या को ठीक रखना है, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए है? करुणा भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। अभी इसी महीने हम लोगों ने बाबा की एक साकार मुरली भी सुनी, बच्चों को कितना सोना चाहिए याद है सबको है? तो कई बार क्या होता है, ज्यादा सोकर, ज्यादा बोलकर, ज्यादा सोचकर हम अपनी शक्तियों को नष्ट करते हैं। तो गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक हम सब ने पढ़ा हुआ था, पहले हम पढ़ते थे समझते नहीं थे, जब बाबा का ज्ञान मिला तो समझ में आया गीता का एक श्लोक है कि जब योगी सोते हैं तो भोगी जगते हैं, पढ़ा है ना सबने, और भोगी सोते हैं तो योगी जगते हैं। तो हम लोगों के कोर्स में जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, हमारे संस्कृत था ये, कोर्स में थी, हमने पढ़ी बस ऐसे रीडिंग, पर बाबा का ज्ञान मिला तो समझ में आया कि कितने बजे सोना चाहिए कितने बजे उठना चाहिए। तो आजकल लोगों ने अपनी दिनचर्या कैसी बना ली है, देर तक सोना और देर से उठना। एक गीत भी बहुत अच्छा बना दिया है कि रात को खाओ पियो और दिन को आराम करो, है ना। बॉम्बे में तो क्या होता है, 12-1-2 बजे तो क्लबों से आते हैं, सोते कब हैं उठते कब हैं। बाबा ने हम बच्चों को इतनी सुंदर दिनचर्या बना के बताई है। पांडव भवन के बाहर आप लोगों ने देखा होगा दिनचर्या पूरी लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो भी VIPs आते हैं ना, उनकी सेवा के लिए जो भी हमारे गाइड भाई बहन है, तो जो भी लोग यहाँ की दिनचर्या को देखते हैं तो उनको इतना अच्छा लगता है, तो इस दिनचर्या से भी लोगों के मन में एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, जैसे कल उनका मनसा सेवा के लिए जब हम VIPs को सुनाते हैं, जब सेवा के फील्ड में रहते हैं या जो भी कोर्स करने वाले आते हैं, जब उनको ये बताते हैं कि हर महीने हम 3rd Sunday को सारे विश्व के लिए योग करते हैं। अभी 21 जून को जब योगा दिवस हुआ ना 21 जून को, तो बहुत जगह से हमें प्रोग्राम्स मिले थे गवर्नमेंट की तरफ से भी, जैसे अभी करुणा भाई ने बताया आपको कि गवर्नमेंट को हमें कन्विंस करना पड़ा, तो शिवानी बहन आशा बहन ने उनको कन्विंस किया, तो गवर्नमेंट की तरफ से कई ऑफिसेस में लेटर्स गए थे कि इन इन संस्थाओं को इन इन लोगों को आप बुला सकते हैं। आपके वहां भी हुआ होगा चंडीगढ़ में, हमारे पास राजस्थान में तो काफी हुआ। तो हमें भी पुलिस लाइन से प्रोग्राम मिला, कस्टम से प्रोग्राम मिला, स्कूलों से प्रोग्राम मिला। तो उनको जब हमने ये बताया कि केवल हमें एक दिन इंटरनेशनल योग नहीं मनाना है, और वैसे तो हम लोग हर महीने 3rd Sunday को सारे विश्व की आत्माओं के लिए योग करते हैं, तो VIPs को इतना अच्छा लगता है, तो बाबा ने तो हम बच्चों को इतना अच्छी दिनचर्या बना के दी है। हमारे बोलने में सेवा, हमारे चलने में सेवा, हमारे उठने में सेवा। वो कहते हैं आप 3:30-4 बजे उठ के आप लोग क्या करते हो, है? उनको क्या बताएं क्या करते हैं, जब उनको बताया जाता है तो कितना अच्छा लगता है। तो करुणा भाई ने हमें अपनी दिनचर्या को भी सेट करने की बातें बताई, इससे हम खुद भी सुव्यवस्थित रहते हैं और हमारे द्वारा इन सब अन्य आत्माओं की भी सेवा होती रहती है। तो जो भी बातें आप अभी हम सब ने सुनी उसको जरूर अपने जीवन में लाएंगे।